पुरुष को परिपूर्ण रूप में देखा, परम पुरुष को किसको देखा? कृष्ण को देखा। कौन से कृष्ण को देखा? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को। उसी के अंदर में उन्होंने मधुरेश कृष्ण और द्वारकेश को भी देखा। कृष्ण के साथ में देखा लक्ष्मी सहस्त्र सब्धम जमान, कोटि कोटि लक्ष्मियां ये गोपियों के रूप में, और उनकी दीपक से सासुमती राजकारी को देखा। उन्होंने त्रिशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति को भी देखा। कृष्ण के लीला अवतार तदेकात्म अवतार आवेश अवतार जुगावतार मनवंतरावतार समस्त अवतारों को भी उन्होंने देखा। और देख करके लीलाओं को देख करके और तब जस्यावरी पुण्यनारायण कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उपद्रता पुरुषार्थों को मोह भया। उन्होंने देखा जो जी भगवान को भूल करके माया के चक्कर में घूम रहा है, अनंत काल तक भगवान को भूल करके इसी माया के चक्कर में घूम रहा है और आ रहा है। कभी देवता कभी गंधर्व, कभी दरिद्र कभी धनी कभी अमीर, कभी कुछ कभी कुत्ता कभी गधा, इसी प्रकार से संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। और जो लोग गुरु पदार्थ करके वैष्णव के संग में हरि भजन करते हुए साधन करते 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 आगे चल रहे हैं, वो धीरे धीरे माया से मुक्त होकर कृष्ण की तरफ ले जा रहे हैं और कृष्ण की लीला में प्रवेश होकर के एकदम आनंदमय हो रहे हैं, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। और उसी को श्रीमद् भागवत के रूप में समाधि की भाषा समाधि भाषा के रूप में श्रीमद् भागवत संहिता का उन्होंने प्रकाश दिया। उसमें उन्होंने कृष्ण के द्वादश संघों के रूप में द्वादश स्कंद लिखे, कितने अध्याय और
335
अध्याय और 18,000 श्लोक उसकी रचना की और बड़े सुंदर रूप से उसका प्रचार किया। इसमें पहले से लेकर के 9 अध्याय तक भक्तों का चरित्र, बड़े बड़े राजाओं का चरित्र, जिससे कि ऐसा वर्णन किया लोगों को संसार में विरक्ति हो जाए, बजाय कहो संसार नश्वर है, इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। एक आदमी यदि स्वधर्म आचरण करते करते सारा जीवन भी बिता दिया तो भी उसे क्या लाभ है, और यदि भक्ति आचरण करता हुआ यदि बीच में मर भी गया, भक्ति यदि सिद्ध भी नहीं हुई तो हानि क्या हुई? कुछ भी हानि नहीं। यदि एक दिन भी भगवान की कथा उसके कान में पड़ गई या भगवान नाम मुख से निकल गया, भगवान की लीला कथा हमारी स्मृति में आ गई, एक दिन भी ठाकुर जी को प्रणाम कर लिया तो क्या होगा? यदि एक दिन भी यदि कर करके वो मर गया या पतित हो गया कुछ अपराध यदि नहीं हुआ तो फिर से उसका आरंभ होकर के फिर आगे बढ़ जाएगा, इसमें कहीं भी कोई हानि नहीं है। वो गीता में भी लिखा है यदि थोड़ा सा भी इसका भगवान नाम का भगवत भक्ति का आचरण कर लिया जाए या भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक एक श्लोक के चार चरणों में से एक चरण अथवा उस श्लोकों में से कोई एक भी अक्षर भी यदि उसका उच्चारित रह जाए तभी उसका कल्याण हो जाएगा, जब उसके निकट नहीं आएगी एकदम गारंटी है। और नहीं संसार का समस्त धर्म भाई अच्छी तरह से पालन किया और भगवान का भजन नहीं किया तो जम पकड़ लेंगे चारों तरफ से, ये अर्थ और रुपया पैसा स्वजन बंधु बांधव और धर्म की रक्षा नहीं कर सकेगा। अधिक से अधिक धर्म यदि करेगा भी तो स्वर्ग लोक ले जाएगा और फिर वहां से घुमाएगा, उसी चक्कर में डाल देगा और भी समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत संहिता को उन्होंने इस रूप में प्रकाशित किया कि जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक भक्त लोग रहेंगे तब तक श्रीमद् भागवत के सूर्य रहेंगे और जगत का कल्याण होता रहेगा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से हम लोग यहां से आरंभ कर और इसमें मैं तो वहां पर चलूंगा कुछ काम पर और धीरे धीरे ये सारा दिन इसकी लौ नहीं टूटे बीच बीच में कीर्तन होगा, ठाकुर जी का ये भोगराग भी होगा सब कुछ। और इसी प्रकार से ये भागवत चलता रहेगा शाम के चार बजे पांच बजे तक, पांच बजे के बाद में जैसे नियमित रूप में प्रवचन करता हूँ वो प्रवचन श्रीमद् भागवत का ही उसमें होगा। और इसके बाद में आरती होकर के और फिर थोड़ा सा कीर्तन होकर के अच्छे अच्छे भागवत के विद्वानों का यहाँ पर भाषण और प्रवचन इत्यादि होगा और 12 बजे रात तक ये कीर्तन इत्यादि चलता रहेगा। फिर 12 बजे साढ़े 12 बजे कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद में साढ़े 12 बजे से 1 बजे तक अभिषेक इत्यादि कर सकते सब लोगों को चरणामृत और पंजरी इत्यादि लेकर के आज का उत्सव आज का समाप्त होगा। कोई खा लेना प्रसाद मत ले लेना, कल हम लोग पारण करने के बाद में तब फिर हम लोग लें। इस बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सारी रात भी जग करके हरिनाम करते हैं, वो अपना कर सकेंगे। जो लोग स्वस्थ हैं जो कर सकते हैं वो निर्जला उपवास भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं निर्जला वो जितना दूर तक हो सके 12 बजे तक हो जाए, शाम को हो जाए, रात तक हो जाए, जहां तक हो सके वहां तक निर्जला कर लेंगे। और जो पूरा नहीं कर सकेंगे, जो पानी के बिना छटपट कर रहे हैं, छटपट का देखभाल जरूरत नहीं, छटपट चटकर कर करके तो तुम्हारे हरिनाम भी नहीं होगा, कीर्तन भी नहीं होगा, सुनना भी नहीं, तो जाकर के सो जाएंगे। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा शिकंजी ले लो, नींबू देकर के थोड़ा सा ले लो शिकंजी। इस तरह से खूब उत्साह के साथ में बालक वृद्ध वृद्धा नर नारी पुरुष सभी लोग उत्साह के साथ में जन्माष्टमी का पालन करें। और कल फिर नंदोत्सव होगा, नंद बाबा और यशोदा जी सब भंडार ठीक कर रही हैं, उनका भंडार में आ रहा है और वो भंडार भी ठीक कर रही हैं और वो सभी कुछ तैयार हो रहा है। कल से फिर भंडारा वो लोग करेंगे, हम लोग भी उस भंडारे में शामिल होंगे और भक्त लोग दही और हल्दी लाएंगे, सभी और हल्दी और उसमें दूध मिला करके और नंद बाबा और वो सब लोगों के तिलक यहाँ लगा देंगे और कुछ नहीं, उछाला उछाली नहीं होगी, दही खींच के बदले वैचारी खींच न करके गले सबके नंद बाबा का प्रसाद यशोदा जी का प्रसाद हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद में सुंदर से हम लोग का भगवान की बड़ी कृपा है, कल नगर संघ की संधि बड़े सुंदर में निर्विघ्न रूप में हजार हजारों भक्तों के रूप में और बहुत सी कीर्तन मंडलियों के बीच में अपूर्व रूप से ही संपन्न हुआ है। गुरु पार्षद हमारे मूल हैं, वर्तमान आचार्य जी की भी कृपा हमारे ऊपर में हम लोगों के ऊपर है। इन सब लोगों की महापुरुषों की कृपा से ये सब संभव होता है, नहीं तो लाखों विघ्न हो जाते हैं। विशेष करके हम लोग का ये सौभाग्य है मथुरापुरी के जितने बड़े बड़े रईस लोग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, धनी हैं, गरीब हैं, किंतु सज्जन हैं, भक्त हैं, क्यों नहीं भी हैं, सभी लोग अपने हृदय के आंतरिक रूप में सहयोग दे रहे हैं। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, ये सारी मथुरा पूरी उमड़ पड़ती है हम लोगों के उत्सव में और सब प्रकार से हम लोगों को कोई भी चिंता इत्यादि की जरूरत नहीं होती, सब लोग वही समाधान करते हैं। विशेष करके ये सब कोई नवदीप से आ गए हैं, कोई हरिद्वार से आ गए हैं, कोई वृंदावन से आए हैं, कोई कहां से सब भक्त लोग आए हैं, सबसे उपलब्ध करके सर। तो आज हम लोग बड़े आनंद के साथ में उत्साह के साथ में ये सब करेंगे। अब यहाँ पर प्रवचन हुआ इसलिए उधर का भंडार यशोदा जी का कोई गड़बड़ ना हो जाए, आप लोग सब कमलापति जी कमला के पति उनके दास भी हैं और सब लोग हैं, ये सब लोग उठकर के देखे कि कमला का भंडार पूरा रहे, लक्ष्मी जी का भंडार पूरा रहे, सभी लोग देख सुन करके उस परम उत्साह के साथ में इसमें लगे। पूर्ण भी है यहाँ पर पूर्ण आनंद रहेगा, कोई भी चिंता की बात नहीं रही, यहाँ पर कृष्ण का प्रेम ही मिला रहता है, यहाँ पर सभी ऐसे ऐसे सब लोग हैं, सब समय मंगल ही मंगल है। इसलिए हम लोगों का उत्सव तो अच्छी तरह से संपन्न होगा। एक एक श्लोक में सब रखे करता हूँ, इसके बाद में परमात्मा जी महाराज अथवा और सब हैं, शिवानंद ब्रह्मचारी जी हैं, यहाँ पर आरंभ करेंगे और ये सब चलता रहेगा, इसका तारा न टूटे। दशम स्कंध कथितो वंश विस्तारो भवता तो मधुजयो राज्यं च उभय वंशानां चरितं परमद्भुतम्। जगो सत्य धर्मशी रक्षितान अवतीर्ण विष्णुजान संकित महाराज जी नौ अध्याय तक श्रवण किया, नव स्कंध के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में विष्णु वंश का परिचय दिया, कृष्ण और बलराम के चरित्र सुनाए और वो मथुरापुरी में अवतीर्ण हुए, गोकुल में लीला किए, ऐसे सहज बहुत संक्षेप में सुख रूप में थोड़ा सा वर्णन किया। सुनते ही अध्याय उन्होंने समाप्त किया, परीक्षित महाराज को बड़ा आनंद मिला। उन्होंने सुना कि हमारे वंश में मथुरा में कृष्ण जी पैदा हुए, हमारे पूर्वज के रूप में है, हमसे संबंधित हैं, परीक्षित महाराज जी के पिता अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन, और अर्जुन के भाई हैं मोटेरे कृष्णचंद्र जी, और सुभद्रा के भी भाई हैं कृष्ण, और सुभद्रा से अभिमन्यु, और अभिमन्यु से ये परीक्षित महाराज, इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं आज हमारे पूर्वज जो कृष्ण है आज उनकी कथा सुनने का अवकाश मिला, प्रभु हमारा मन भरा नहीं, इसलिए आप कृष्ण की बलदेव की लीला चरित्रों को विस्तारित रूप में और अपूर्ण भाव से आप वर्णन कीजिए। इसलिए वो कह रहे हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य, सोम माने चंद्रवंश का और सूर्य वंश के बड़े बड़े राजाओं का, भक्तों का, महर्षियों का चरित्र आपने वर्णन किए हैं। राज्यांश उभय वंशाना जिसमें इक्ष्वाकु, अजय, महाराज दशरथ, रामचंद्र और लवकुश इत्यादि का आपने वर्णन किया और राम का अपूर्व जस वर्णन किया। इसके बाद चंद्रवंश में भी आपने प्रारंभ से ही ध्रुव के पिता सुल्तान दास और प्रियव्रत इसको बाद में ध्रुव जी, उसके बाद में बड़े बड़े ऋषि दक्ष प्रजापति शंकर जी का चरित्र और सब आपने वर्णन किया। कपिल देव जी का संवाद भी आपने सुनाया, आपने पिताश्रु का उपाख्यान भी श्रवण कराया, इस तरह से आपने सब वर्णन किया। वर्णन करने के बाद भी अद्भुत चरित्र वर्णन किया, जब प्रधानमंत्री लक्ष्य और चंद्रवंश में जदु नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हो गए हैं। यहाँ पर परम धर्मात्मा कहने से क्या तात्पर्य, जो सत्यवादी होता है वो धार्मिक है, जो लोग दूसरों के लिए अपने शिव को भी दे देते हैं वो लोग धार्मिक है, दूसरों का उपकार करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, परिस्त्रियों को माता और पुत्र के समान ज्ञान करते हैं, पास अजुआ इत्यादि नहीं खेलते, इनसे दूर रहते हैं, अहिंसा इत्यादि का प्रतिष्ठान करते हैं, ये लोग हैं। किंतु ये परमाद्भुत जो इनका चरित्र है, ये कौन, जदु महाराज का, ये केवल धार्मिक ही नहीं है, ये तो ऐसे महापुरुष हैं जो भगवत भजन करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने पिता इत्यादि को भी त्याग कर दिया, उनका आदेश नहीं पालन किया। पुत्र का कर्तव्य है कि पिता का वो आदेश माने, माता जी का आदेश माने, किंतु वह पुत्र सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान के लिए भी माता पिता गुरु भाई तथा बंधु स्त्री सबको प्रत्याग कर सकता है। गुरु न सत्या पदनों न सत्या पिता न सत्या जन्म न सत्या कैवल न सत्या सत्या नमोदे समुदे। अपने गुरु को, जिन गुरु ने बलि महाराज जी ने अपने गुरु को प्रत्याग कर दिया, गुरु का प्रत्याग कभी भी नहीं विहित है, गुरु को अपना भगवान का स्वरूप जानो, किंतु ऐसे गुरु को भी बलि महाराज ने प्रत्याग कर दिया कि इसलिए इसलिए कि भगवान को या समस्त राज्य अवसर देने के लिए मना किया था। भरत जी ने अपनी मैया को त्याग कर दिया क्योंकि रामचंद्र जी के सेवा में बाधा दी थी और सचो पिता प्रहलादीषण अपने भाई को भी छोड़ दिया भगवान का भजन करने के लिए। रावण ने बाधा दी थी, पिता का हरण कर लिया था। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को छोड़ दिया और गोपियों ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया। भगवान का भजन करने वाले ही सर्वश्रेष्ठ परम धार्मिक हैं और वही भक्ति लोग भगवान के अहित की भक्ति करने वाले होते हैं। इसलिए जतु जी ने इसका इतिहास है वो पीछे सब देखेंगे टाइम। उन्होंने अपने पिताजी का वचन नहीं माना। उन्होंने के पिताजी ने कहा था जब युवावस्था हमको दे दो हमारी वृद्धावस्था ले लो। उन्होंने कहा युवावस्था हम नहीं देंगे, ये युवावस्था भगवान का भजन और भगवान की सेवा करने के लिए है, भोगों को भोगने के लिए नहीं है। आप भगवान का भजन कीजिए, मैं अपना युवावस्था को दे दूँ, किंतु आप भोग विलास करेंगे, राजधन का भोग करेंगे, इसके लिए मैं नहीं दूँ। उसके पिताजी असंतुष्ट हुए, नाराज हो गए। फिर उनके पुत्र गुरु जी ने कहा अच्छा बात है आपको देता हूँ। उन्होंने अपना युवावस्था दे दिया और उसके बदले में वृद्धावस्था ले ली। उन्होंने कहा कि तुम ही हमारा यथार्थ पुत्र है, जाओ तुम्हारे वंश के लोग तुम हमारे वंश का उत्तराधिकारी होगा और तुम्हारे वंश के जो जन्म लेने वाले होंगे उस वंश में राजा होते जाएंगे। जदू का कोई भी जदू न तो खुद राजा होगा और न सम्राट होगा न उसके पुत्र और वंश परंपरा के कोई राजा होंगे। सुनकर कहा ये मत तू ऐसा ही हो, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान उनको प्रसन्न होगा कि उसी कुल में कृष्ण के रूप में बलदेव के रूप में ये पधारे। उसी वंश में चंद्र वंश में ही हमारे पांडव लोग इत्यादि भी उस समय के जितने भक्त लोग थे उसी वंश में सब आए थे। तो जब उस वंश में ही जदू से क्रम समी के आते आते टूटते नहीं उनके पिता देवनी हो गए। देवनी के दो पत्नियां हुई, एक छत्रियानी और एक हुई गोपी। गोपी से परजन्य और परजन्य से नंद महाराज और नंद महाराज से कृष्ण हुए और इधर अजामिल से हुए सुरसेन से हुए वसुदेव महाराज और वसुदेव महाराज से कृष्ण हुए। इस तरह से दोनों परंपराएं एक से निकल करके और फिर ऐसे होती फिर दोनों एक में मिल गई। एक में हुए कृष्ण ऐश्वर्य रूप में आए समस्त ऐश्वर्य इत्यादि के साथ में और एक समय में समस्त आधुर्य इत्यादि जैसे में माधुर्य के द्वारा प्रबंधित होकर के माधुर्य लेकर के प्रबंधित दोनों ने मिलकर के मिलाए थी। इसमें कृष्णचंद्र जो द्वारका भी मथुरे थे मथुरा द्वारका में ऐश्वर्य में ली जाएगी थी उसमें भी माधुर्य है किंतु ऐश्वर्य के द्वारा माधुर्य गुप्त पूछता है। अब ब्रज में माधुर्य प्रकटित है और ऐश्वर्य कुछ छिपा हुआ है। ऐसे सब लीलाएं की उन्होंने कहा जब का अंत अवतीर्ण कृष्ण विष्णु दुर्ज्ञान संतान यहाँ पर कि अंत के साथ कृष्ण जी स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वहां पर प्रकटित हुए। अंत के साथ में मैंने क्या बलदेव ने कहा बलदेव उनके अंत है उनके साथ में और अंत कौन है
अवतार
और सब
अवतार
में द्वारका में बलदेव वासुदेव संकर्षण प्रतिम अनुरुद्ध उनके चतुर्थ किंतु यहाँ पर अंश के सहित में ये अतिरुद्ध में ऐसे विष्णु का संपूर्ण जग को वर्णन नहीं किया जा सकता है। अंश में किस वर्णन कीजिए इसके बाद में अवतीर्ण जंदो जदोर वंशे भगवान भूत धामन कितवान जान विश्वात्मा तान नो बद विस्तरा निरक्त तर्शय रूप दीयमान औषधा स्रोत्रि मनोभिराम कहोत्तम श्लोक गुणानुवाद कुमार यज्ञे कपिना पशुना। हो महाराज सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भूतभाव भूतों को पालन पोषण करने वाले सारा इसका ये संपूर्ण भवनाथ यदुवंश में अवतीर्ण हुए वहाँ पर विश्व के कल्याण के लिए क्या क्या लीलाएं की वो मथुरा में प्रकटित होकर के गोकुल में क्यों चले गए। गोकुल में कुछ दिनों तक लीला करने के बाद फिर मथुरा में क्यों चले आए और मथुरा में कुछ दिन रहने के बाद में द्वारका क्यों चले गए, इसका कारण हमें बतलाइए। मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की, इसके पश्चात में गोकुलचारी में कौन सी लीलाएं की, ब्रजमंडल में कौन कौन सी लीलाएं की, उसके बाद में फिर मथुरा में आकर के क्या क्या किया, गुरुगृह में कैसे पढ़े लिखे, तत्पश्चात फिर चले गए द्वारका में गए क्यों और वहाँ पर कितनी स्त्रियों के साथ उनकी शादियां हुई, कैसी कैसी शादियां हुई, कौन कौन सी लीलाएं की, इस सबका वर्णन आप विस्तार पूर्वक कीजिए। जो लोग उपगी जाना भौरों की औषधि क्या है, एकमात्र हरि कथा, वो हरि कथा सब हरि कथा ही भौरों की व्याधि है औषधि है। हाँ है तो किंतु अवैष्णव मुखो स्वर्णम पूतम हरि कथा अमृतम भगवान की लीला कथाएं सभी भौरों के लिए अवसर है किंतु अवैष्णव यदि व्यक्ति हो और मुख से निकली हुई हरि कथा हो तो सांस से निकले हुए बीज के समान वो कार्य करता है, उस कथा को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो भागवत की कथा कहने लगेगा कोई व्यक्ति और उसमें सत्यनारायण की कथा भी डाल देगा, कहे वही कृष्ण सत्यनारायण है और भागवत का कथा कहने से पुत्र लक्ष्मी इत्यादि सभी इसी की प्राप्ति होगी, वो सत्यनारायण का वाचना हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मुक्त इसमें लगा देगा और इसका पाठ करने से लड़का पैदा हो जाएगा, इसका पाठ करने से रोग दूर हो जाएगा, इसका पाठ करने से स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा समझा देगा भागवत कार्य पाठ का ये। इसलिए वैष्णव को मुख्य भगवान की कथा सुनिए और विशेष करके निवृत्त तक से उपगी जमाना जिनकी समस्त तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी है, कोई भी कामना नहीं है, जिसको अर्थ धर्म काम मोक्ष यहाँ तक की नारायण की भक्ति यहाँ तक की राम और द्वारकाधीश इत्यादि के प्रति भी शुद्ध निर्मल अनुराग नहीं, कृष्ण के चरणों में राधा जी के चरणों में अनुराग है, ऐसे परम संत जो सुखदेव गोस्वामी हैं परम निवृत्त हैं, ऐसे लोगों के मुख से जो हरि कथा निकलती है वो भौरों के लिए औषधि है और भक्तों के लिए कहता है रसमय है और ब्रजलोक में पहुंचा देने वाली कथा है। इसको विषयी त्यागी मुक्षु योगी भक्त एकांतिक भक्त रसिक भक्त सभी लोगों के लिए परम आदर। कौन ऐसा मूर्ख आदमी है आत्मघाती मनुष्य है जो कि भगवान की कथा ऐसे महापुरुष के मुख से निवृत्त कथा सही मुख से न सुने जो भवरोग का औषधि और ब्रजरस को देने वाली ये कथा है, ऐसी कथाओं के प्रति ऐसा कौन सा मूल व्यक्ति आत्मघाती है जो उनकी नहीं होती है। इसलिए सब लोगों को भागवत की कथा सुननी चाहिए, शिष्य सब उनके जन्म इत्यादि तिथियों के अवसर पर ये तो जरूर सुनना चाहिए। आज ही तक कह करके मैं अपना भी वक्तव्य समाप्त करता हूँ, इसके बाद में धीरे धीरे